पहले तो मुझे राब्ता के बारे में बताइए, राब्ता क्या है, किसकी कहानी है और आपका इसमें क्या रोल है?
राब्ता एक पहले तो मैं राब्ता का मतलब बताऊंगी। राब्ता एक ऐसा कनेक्शन होता है जो आप किसी की तरफ फील करते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता है कि क्यों है। जैसे ब्लड रिलेशन तो अलग बात है, उन लोगों से हम सब कनेक्टेड होते हैं जो हमसे हमारे ब्लड रिलेशन होते हैं, बट उसके अलावा कभी कभी हम लोगों से मिलते हैं और पहली बार मिल रहे होते हैं लेकिन लगता है कि पहले मिल चुके हैं या पहली बार जैसा नहीं लग रहा है। तो आई थिंक उस कनेक्शन को हम राब्ता बोलते हैं। तो ये कहानी भी ऐसे एक लड़का और लड़की के बारे में है जो एक चॉकलेट शॉप में मिलते हैं और उन्हें एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है। एक ऐसा लगता है कि पहले मिल चुके हैं और पहली बार जैसा नहीं लग रहा होता है और उन्हें समझ नहीं आता है कि ये क्यों है। और विथ टाइम स्लोली ये पता चलता है कि वो कनेक्शन एक किसी और दुनिया से, किसी और टाइम से है और तब से चलता आ रहा है। तो राब्ता जो है वो उस प्यार के बारे में बात करती है जो टाइमलेस है, जो अगर सच्चा प्यार है तो विद टाइम चेंज नहीं होता है। तो इट्स अ स्वीट लव स्टोरी और मेरा जो कैरेक्टर है वो क्योंकि दो अलग दुनिया दिखा रहे हैं हम, तो दो अलग किरदार मैं प्ले कर रही हूँ। जो आज की दुनिया का किरदार है उसका नाम है सायरा, वो बुदापेस्ट में रहती है, चॉकलेट शॉप चलाती है, चॉकलेट बनाती है, मैंने चॉकलेट बनाना भी सीखा था इसके लिए। थोड़ी क्वकी है, थोड़ी सी हटके है, थोड़ी ऑफ है, समझ नहीं आएगा कि कुछ कुछ उसकी हरकतें थोड़ी अलग लगेंगी, इनडिसाइसिव है, कुछ सोचती है, कुछ बोलती है, कुछ और करती है, और लेकिन बहुत ही इंडियरिंग है, बहुत लवेबल है। उसे बहुत बुरे सपने आते हैं, उसे समझ नहीं आता है कि उसे क्यों आते हैं ये सपने, लेकिन वो उसकी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुके हैं, तो शी सॉर्ट ऑफ मेड पीस विद इट। जो साइबा का कैरेक्टर है, जो कि पुराने जमाने का कैरेक्टर है, वो एक बहुत ही अलग दुनिया है, बहुत ही अलग टाइम से बिलोंग करता है। वो एक ऐसा टाइम है जो बहुत रॉ है, ऑलमोस्ट ट्राइबल है, और वो एक वॉरियर प्रिंसेस है, बहुत बहुत निडर है, बहुत स्ट्रांग है, फियर्स है, और मतलब उसके सामने शेर भी आ जाएगा तो भी वो नहीं डरेगी। वो ऐसी लड़की है, वो ऐसी लड़की है जो अपनी लैंड के लिए, जहाँ वो रहती है, टेरिटरी जो है उसका, ट्राइब जो है, उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। तो मैंने उसके लिए हॉर्स राइडिंग भी सीखी थी।
मैं वही जानना चाह रहा था कि ये किरदार जो दो एकदम अलग अलग तरह के किरदार हैं, इनके लिए जबरदस्त रेंज आपको मिली है एक्टिंग के लिए, तो आपने वो कैसे तैयार किया?
जो कंटेम्प्ररी जो कि करंट टाइम वाला किरदार है, उसके लिए स्किल्स में मुझे चॉकलेट मेकिंग सीखना था क्योंकि वो चॉकलेट बनाती है, तो थोड़ा एक प्रो जैसा लगना चाहिए जब बना रही है चॉकलेट। और उसके अलावा हम लोगों ने, क्योंकि इस फिल्म में पानी जो है वो थोड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे और सुशांत दोनों को स्विमिंग नहीं आती थी, तो हम लोगों ने पहले स्विमिंग सीखी है, फिर अंडर वाटर सीक्वेंसेस के लिए स्कूबा डाइविंग सीखा है, वो जो स्कूबा इक्विपमेंट है उसको कैसे यूज करते हैं। साश्ता का कैरेक्टर है, वो बहुत अलग था मेरे लिए समझना, क्योंकि उसका कोई रेफरेंस नहीं था हमारे पास। स्किल्स में हॉर्स राइडिंग है जो उसको आती है, तो हॉर्स राइडिंग मुझे सीखनी पड़ी, क्योंकि एक वॉरियर है तो ऐसे बहुत सारे स्किल्स हैं, यू नो, कई दिखाए गए हैं क्योंकि बहुत कम टाइम दिखता है, मिलता है वो दिखाने के लिए। तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, थोड़ा मिक्स मार्शल आर्ट जो है वो सीखा, हल्की सी वेपन ट्रेनिंग भी सीखी थी जो कि फाइनली यूज नहीं हुई लेकिन मेरे लिए काम आई थी, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है वो, आप एक वॉरियर की बॉडी लैंग्वेज अलग होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। लड़कियां यूजली इतनी स्ट्रांग नहीं दिखती हैं फिजिकली, जब आप भाग रहे हो, जब आप लड़ रहे हो, आपके रिफ्लेक्सेस जो है, आपके मूव्स, आपका स्टांस, सब कुछ एक वॉरियर जैसा होना चाहिए, तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए।
तो आपने क्या एक्शंस किए हैं खुद?
हाँ, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बेसिकली हम आपको ये दूसरी दुनिया में 20 से 30 मिनट के लिए लेके जाते हैं, तो उस 20 से 30 मिनट में एक छोटा पोर्शन है जिसमें एक चेज है और थोड़ा बहुत एक्शन है, तो वो किया है, थोड़ा हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो किया है। बट थ्रू आउट द फिल्म, क्योंकि वो एक वॉरियर है तो उसका बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरह से खड़ी होती है, सब थोड़ा अलग है, बात करने का तरीका थोड़ा अलग है। मैंने कोशिश की है हल्की सी थोड़ी लो टोन यूज करूं, हालांकि ज्यादा लो नहीं जा सकती है लड़कियां, क्योंकि आप फिर लड़की जैसे साउंड नहीं होते हो।
ये एक बहुत दिलचस्प बात लग रही है मुझे कृति, की क्या ये एक विमेन ओरिएंटेड कैरेक्टर जो फिल्म है वो इस कैरेक्टर के इर्द गिर्द है या सुशांत के कैरेक्टर के इर्द गिर्द है? इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ दिस स्टोरी?
सी दिस इज अ लव स्टोरी, तो एक
नहीं मतलब
लव स्टोरी नहीं बनती।
सुशांत के भी दो कैरेक्टर्स होंगे?
ऑफ कोर्स सुशांत के भी दो कैरेक्टर्स हैं। सुशांत इन दो कैरेक्टर्स का जो पिछले टाइम में कनेक्शन था और जो इस टाइम में कनेक्शन है उस पे बेस्ड है, और एक और थर्ड कैरेक्टर है जो कि जिम साहब है वो प्ले कर रहे हैं, तो उनका कैरेक्टर भी पिछले टाइम में भी है और इस टाइम में भी है, और ये तीन जो लोग हैं इनका पिछले टाइम से कनेक्शन जो था वो क्या था और फिर इस टाइम में क्या है और कैसे वो चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये फिल्म मोटा मोटा अगर मैं कहूँ तो इस चीज के बारे में है।
आप क्या पुनर्जन्म में यकीन करती हैं?
कोई ऐसा प्रूफ तो है नहीं मेरे सामने कि मैं बिल्कुल यकीन से बोल सकूं कि हाँ ये तो होता ही है, बट मैं अपने किरदार के लिए एक्चुअली एक बुक जो है वो मुझे दिनेश विजन ने दी थी, मेनी लाइफ मेनी मास्टर्स, मैं वो पढ़ रही थी और उसमें ये भी बताया गया है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी से मिलते हो और आपको एकदम से बहुत ही जाना पहचाना महसूस होता है, या फिर कोई आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है बिना किसी रीजन के, या कभी कभी होता है जब आप किसी से पहली बार मिलते हो, कभी पहले मिले नहीं हो पर अच्छा नहीं लगता वो इंसान, पता नहीं है क्यों पर नहीं अच्छा लगता। ये तो हमारे अनएक्सप्लेनेबल कनेक्शन होते हैं, कभी कभी वो पिछले किसी जन्म से रिलेटेड हो सकते हैं जहाँ पे आपका उनसे कोई और रिलेशन रहा हो इसलिए वो अच्छे लगते हैं या वो नहीं अच्छे लगते हैं। तो आई सॉर्ट ऑफ मुझे ये चीज बहुत फैसिनेटिंग लगी थी जब मैंने पढ़ा और कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत इसमें बिलीव करना चाह रही थी।
मेरी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जब हम हिंदी में इस तरह की फिल्म बनाते हैं, फैंटेसी जब भी हम हिंदी में बनाते हैं तो वो इस तरह से बनती हैं कि उस पर यकीन नहीं होता है। जैसे मतलब हॉलीवुड में अगर फैंटेसी बनती है तो आप उस दुनिया में खो जाते हैं उन दो ढाई घंटों के लिए, तो क्या ये फिल्म उस तरह मुझे वहाँ उस प्रॉब्लम से निकाल पाएगी?
मेरे हिसाब से तो निकाल पाएगी, आई होप कि निकाल पाए, क्योंकि ये जो यूजुअली क्या होता है हम दूसरी दुनिया में जब जाते हैं तो हम क्योंकि हमने वो दुनिया देखी नहीं है तो हम थोड़ा सा एनिमेटेड हो जाते हैं, थोड़ा सा ऐसी चीजें डाल देते हैं जो शायद लोगों को रियल ना लगे, और एज कैरेक्टर्स भी हम शायद कभी कभी उतना रियल तरीके से बिहेव नहीं करते हैं। इनफैक्ट मैं जब ये दूसरी दुनिया जो है उसके शूट के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो हम सबके पास कोई रेफरेंस नहीं था, क्योंकि हमने जितनी भी माइथोलॉजिकल टाइप किसी और टाइम की जो मूवीज हिंदी सिनेमा में देखी है वो यूजुअली वैसी रही है जिसमें जैसे मुगल का टाइम या अशोका का टाइम या यू नो थोड़े रॉयल राजा रानी टाइप दिखाए गए हैं, लेकिन हम वैसी दुनिया नहीं दिखा रहे थे, हम थोड़ी ट्राइबल दुनिया दिखा रहे थे, थोड़ी रॉ दुनिया दिखा रहे थे, थोड़ी ज्यादा रियल दुनिया दिखा रहे थे। तो इनफैक्ट मैंने खुद के रेफरेंसेस के लिए जो मूवीज देखी थी वो हॉलीवुड से ही थी, मैंने अपोकलिप्टो देखी थी, मैंने ब्रेव हार्ट देखी थी, मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा था, तो उसमें जिस तरह का माहौल है जो थोड़ा एक रॉनेस है, थोड़ा एक जो ट्राइबल नेचर है, अपोकलिप्टो में आपको समझ नहीं आता है वो बोल क्या रहे हैं लेकिन फिर भी आप उस दुनिया में बिलीव करना चाहते हैं, तो वो सब देखकर हम लोगों ने यू नो उस जोन में घुसने की कोशिश की है। एंड आई थिंक दीनू ने जिस तरह से ये 20-30 मिनट जो है वो शूट किए हैं, एक एक डिटेल पे यू नो ध्यान दिया है, चाहे वो हम लोगों ने मॉरिशस में जाकर एक रियल लोकेशन में एक नेशनल पार्क में शूट किया था जो कि जंगल ही है एक तरह से, तो जो पूरी टीम थी वो काफी इन चीजों में स्पेशलाइज थी। तो आई होप कि आपको भी वो जो दूसरी दुनिया है जो हमें लगता है कि राबता का बहुत ही स्पेशल पार्ट है वो आपको भी उतना ही स्पेशल लगे।
अच्छा, जो दो दुनिया आप देख चुकी हैं, एक तेलुगु इंडस्ट्री और दूसरी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इन दोनों में फर्क क्या लगता है आपको?
मुझे ऑनेस्टली कोई फर्क नहीं लगता है एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज ऑब्वियसली, और कोई फर्क नहीं है, पैशन टैलेंट हार्डवर्क सब कुछ सेम ही है। इनफैक्ट हीरोपंती में जो पूरा कैमरा डिपार्टमेंट था वो तेलुगु था, तो आई थिंक आजकल हम लोग हर जगह काम कर रहे हैं, साउथ इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, यहाँ की इंडस्ट्री के लोग वहाँ काम कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली द पैशन फॉर देयर वर्क द नॉलेज द टैलेंट एवरीथिंग इज द सेम। आई ओनली फेल्ट कि लैंग्वेज अलग थी, हाँ मैं मुझे समझ में आता है सब कुछ तो मैं इम्प्रोवाइजेशन कर सकती हूँ एज एन एक्टर, चीजें ऐड कर सकती हूँ, वहाँ क्योंकि मुझे वो लैंग्वेज नहीं पता थी तो मैं मुझे उतनी लिबर्टी नहीं थी एज एन एक्टर कि मैं कुछ अपना डाल सकूं उसमें।
आप अपना डालती हैं जब आप किरदार को तैयार कर रही होती हैं, किस तरह डालती है, क्या आप शब्द डालती हैं?
छोटी छोटी हरकतें, तो आप जब भी किसी कैरेक्टर को फॉर्म कर रहे होते हैं तो यू नो एज एज ह्यूमन बीइंग्स हम सबकी छोटी छोटी आदतें होती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें दूसरों से अलग करती हैं. तो आई थिंक एज कैरेक्टर्स ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव एटलीस्ट वन टू वेरी स्मॉल थिंग्स विच विच द कैरेक्टर हैज. यू नो इट कैन बी अ बॉडी लैंग्वेज, इट कैन बी द वे दैट कैरेक्टर वॉक्स, इट कैन बी सर्टन रिएक्शंस.
कभी ऐसा
तो आई
हुआ
थिंक
कृति की
वो
आपको राइटर की लिखी कोई बात अच्छी ना लगी और आपने उसको कहा हो कि नहीं ये नहीं होना चाहिए?
नहीं एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन एक आध बार ऐसा हुआ है कि कोई सीन है और उसमें कोई एक पर्टिकुलर डायलॉग है. तो जैसे आई थिंक एक बार राब्ता में भी हुआ था कि मैंने दीनू को बोला था कि मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा बोलेगी, मतलब ये क्यों बोल रही है ये. तो दीनू वाज वेरी लिबरल अबाउट इट एंड ही सेड ही हर्ड मी कि क्यों नहीं बोलेगी पहले बता. तो मैंने अपनी तरफ से बताया तो ही फेल्ट आई वाज गोइंग विद द कैरेक्टर. तो उसने बोला कि नहीं फील हो रहा तो मत बोल. तो आई थिंक वो जो फीलिंग है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. डायलॉग जो है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितनी फीलिंग इंपॉर्टेंट होते हैं.
करेक्ट
तो जो भी आप फीलिंग के साथ बोलोगे वो बिलीवेबल है, जो फीलिंग के साथ नहीं बोलोगे वो डायलॉग
बहुत सुंदर बात।
विवेक लास्ट क्वेश्चन. हाँ प्लीज.
हाँ बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, अगला क्या आ रहा है राब्ता के बाद क्या?
राब्ता के बाद है बरेली की बर्फी
हाँ
जो कि जुलाई में आ रही है, जुलाई एंड में आ रही है. और वो भी बहुत स्पेशल फिल्म है. पहली बार यूपी का फ्लेवर जो है वो मैंने चखा है किसी फिल्म में. बहुत ही स्मॉल टाउन बरेली से आई हुई लड़की जो काफी टॉम बॉयश है, जो काफी हटके है बरेली में, जो अपनी शर्तों पे जीती है एक तरह से. काफी ब्राटी है बट एट द सेम टाइम क्वेश्चन करती है, लॉजिकल है. और साथ ही साथ छोटी छोटी उसमें ऐसी हरकतें हैं कि वो छुप छुप के सिगरेट पीती है. वो बरेली की एक लौती लड़की है जो ब्रेक डांस कर सकती है, लेकिन वो ब्रेक डांस बरेली का ब्रेक डांस है. तो बहुत ही स्पेशल फिल्म है. अश्विनी अय्यर तिवारी ने डायरेक्ट की है, नितेश तिवारी ने लिखी है. और मुझे बहुत अच्छा मौका मिला बहुत सारे मंझे हुए एक्टर्स के साथ काम करने का. पंकज त्रिपाठी, सीमा पावा आर प्लेइंग माई पेरेंट्स. आयुष्मान एंड राजकुमार राव आर ऑल्सो इन द फिल्म विद मी. सो इट्स बिन अ ग्रेट जर्नी एंड बहुत मजा आया लखनऊ और बरेली में शूट करने में.
चलिए
सो
हमें
दैट्स अनदर
इंतजार
वेरी
रहेगा,
स्पेशल फिल्म.
हाँ हमें इंतजार रहेगा आपसे, उम्मीद है रब्ता से रब्ता कायम होगा और ऑस्ट्रेलिया के दर्शकों की
थैंक
ओर
यू
से भी
सो मच,
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको।
थैंक यू सो मच, थैंक यू.